आज हमारे बीच में चैतन्य दर्शनीय मूरत आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर निर्मला दीदी जी विराजमान है। हम रूहानियत के इत्र छिड़कते हुए एक हाथ हिलाते हुए दीदी का स्वागत सत्कार अभिनंदन करते हैं। दीदी मुंबई महानगरी से निकले ईश्वर के अनमोल रत्न है। 1962 में जब आपने अपनी मेडिकल स्टडीज पूरी की उसी वर्ष आपको यह ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। मुंबई में पहली मुलाकात मम्मा से हुई और बाद में बाबा से। तो दीदी का यह सौभाग्य रहा कि मम्मा बाबा की साकार पालना प्राप्त करने का और मम्मा बाबा की राय सलाह से ही 1966 में दीदी ने क्लिनिक भी खोला और सेवा केंद्र भी खोला। और वो सेवा केंद्र दीदी को लौकिक पिता ने दहेज के रूप में दिया था। दीदी पहली कन्या रही जो आते ही अपना तन मन धन सफल किया। फिर तो बाबा ने आपको 1971 में विदेश सेवा के लिए सिलेक्ट किया। तो 1971 से 78 तक आप विदेश की धरनी पर ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, लंदन, यूनाइटेड किंगडम, मॉरिशस आदि आदि विविध स्थानों पर गए और सेवाएं आरंभ की। कई सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बने और बाबा के बच्चे भी निकाले। और उसके बाद 1978 में आपने ऑस्ट्रेलिया सिडनी को अपना बेस बनाया और 1978 से 2008 तक सिडनी में बेस्ड रहकर आपने एशिया पैसिफिक रीजन में सेवाओं का विस्तार किया। आज की डेट में इस रीजन के अंतर्गत 17-18 देश हैं जहां बाबा के बच्चे हैं, सेवा केंद्र है। तो वर्तमान में आप एशिया पैसिफिक रीजन के डायरेक्टर हैं और फिर 2009 में तो बाबा ने आपको ज्ञान स्टोर अकेडमी का भी डायरेक्टर पद दे दिया। तो दोनों ही डायरेक्टर पद संभाल रहे हैं वर्तमान में। और फिर बाबा ने और आपके कंधों पर जिम्मेवारी डाली, आप वर्तमान में हमारे यज्ञ के जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं। जितनी ही कंधों पर जिम्मेवारी बढ़ती जा रही है उतना ही दीदी लाइट रहते हैं, उपराम रहते हैं, या यूं कहे बाबा मम्मा और दादियों से जो पालना ली बिल्कुल उनके जैसे बनते जा रहे हैं और अपनी कर्मातीत स्थिति की ओर करीब बढ़ते जा रहे हैं। तो आज ऐसे दीदी से हम सुनेंगे मम्मा बाबा के साथ के अनुभव कि कैसे उन्होंने अपनी स्थिति को बनाया। तो हम भी वहां से इंस्पिरेशन लेके अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाएंगे। तो सुनते हैं दीदी से, आदरणीय दीदी जी।
ओम शांति। मम्मा बाबा हमारे यज्ञ के लीडर भी थे, माँ बाप भी थे, टीचर भी थे, तो जैसे बताया मम्मा से तो मुझे पहले ही दिन मिलने का मौका मिला। उन दिनों में बम्बई में बहुत थोड़े स्टूडेंट्स थे और मम्मा बाबा काफी आते रहते थे। तो मम्मा हर संडे वाटरलू मेंशन में पब्लिक लेक्चर करती थी। तो हमारी फ्रेंड उषा रमेश की वो ज्ञान में आई, उसको निश्चय हुआ, फिर उसने मुझे भी निमंत्रण दिया कि मम्मा के प्रवचन सुनने आओ संडे। तो पहले तो कार्ड भेजा, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, फिर फ्राइडे फोन किया कि संडे क्या करती हूँ। मैंने कहा ठीक है मैं फ्री हूँ। उस समय मैं हॉस्पिटल में काम करती थी और संडे संडे हमको फ्री होता था, परंतु ऑन कॉल यदि कोई भी इमरजेंसी है उसी हॉस्पिटल में या कोई भी आसपास की, तो हाजिर रहना होता था। और हमारा लौकिक घर हॉस्पिटल से घंटा डेढ़ घंटा ट्रेन से जाना पड़ता था, इसलिए उस संडे मुझे घर नहीं जाना था। तो मैं गई सेंटर पर और मम्मा के प्रवचन के पहले दादी निर्मल शांता, हम चार पांच जने जल्दी पहुंचे थे तो थोड़ा बैठकर चिटचैट कर रही थी, संस्था का एम बता रही थी। मुझे वो बहुत अच्छा लगा क्योंकि बचपन से मेरी इच्छा थी सोशल सर्विस करने की, और इसलिए मैंने मेडिसिन का अभ्यास किया। मेरे लौकिक पिताजी भी सोशल वर्कर थे और 17 साल में हमारी सब बहनों की सगाई हो गई थी, तो मेरे लिए भी लड़का ढूंढना शुरू किया हमारे पिता ने। हमने कहा या तो पढ़ूंगी या तो शादी करूंगी, कहा भले पढ़ो। फिर उसने कभी शादी की बात नहीं निकाली। तो ये भी मेरा लक्ष्य था कि शादी करके दो चार बच्चों की पालना के लिए मैंने मेडिसिन की पढ़ाई नहीं की है, प्रैक्टिस जरूर करनी है। तो मम्मा से प्रवचन सुना, प्रवचन सुना कि फौरन उषा ने कहा चलो तुम कोर्स करो। मैंने कहा ठीक है, तो दूसरे दिन से कोर्स किया। 7 दिन पूरा हुआ, मम्मा से मिलाया कि मेरी सखी है डॉक्टर है आदि आदि। मम्मा ने कहा ठीक है सब समझ में आता है। मैंने पहले तो कहा मम्मा मेरी टीचर जा रही है, क्योंकि मुझे उस समय कोर्स कराने वाली थी कुंज दादी जो पटना से आई थी। तो जब मम्मा बाबा बम्बई आते थे तो दादियों को बुलाते थे, आओ रिफ्रेश भी हो जाओ, मम्मा से भी मिलो, बम्बई भी देखो। बम्बई दिखाने का आकर्षण था। तो मैंने कहा मम्मा जा रही है। मम्मा कहा कोई बात नहीं, निर्मल शांता तुमको देखेंगे। पीछे मैंने प्रश्न पूछा, मम्मा कृष्ण का पहला जन्म भी सतो प्रधान था और क्राइस्ट का पहला जन्म भी सतो प्रधान था, दोनों में क्या अंतर? तो मम्मा ने समझाया क्राइस्ट है द्वापर युगी सतो प्रधान था, जन्म से नहीं। कृष्ण जन्म से सतो प्रधान था।
फिर 3-4 मास के बाद उषान ने मुझे, मम्मा उनके घर में रहती थी क्योंकि बम्बई सेंटर बहुत छोटा था, तो अपने घर में भोजन के लिए मम्मा के साथ बुलाया। तो भोजन के समय हमने मम्मा से पूछा, मम्मा मेरी दिल नहीं है मेडिकल प्रैक्टिस करूं, मैं समझती हूं ईश्वरी सेवा में लग जाऊं। मम्मा ने कहा, तुम जब ब्रह्मा बाबा से मिलो तब पूछना ये सवाल। तो मम्मा को उस समय बम्बई में टोटल 9 मास रहना पड़ा क्योंकि लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाना था। अब गड़बड़ ये है, आर्टिस्ट पेंट कर सकता है परंतु साक्षात्कार नहीं करता है, संदेशी साक्षात्कार करती है पेंट नहीं कर सकती। पर मम्मा की दिव्य बुद्धि थी, वो साक्षात्कार में कभी नहीं जाती थी परंतु बुद्धि में क्लियर था कि कैसे होंगे लक्ष्मी नारायण। तो मम्मा और वहां शीलेंद्रा दादी थी जो ट्रांस में जाती थी, दोनों मिलकर आर्टिस्ट को डायरेक्शन देते थे। तो फिर मम्मा का क्लास सिर्फ सवेरे होता था और सवेरे हमारी ड्यूटी होती थी, मैं शाम को ही जा सकती थी। सिर्फ संडे संडे जाती थी सवेरे। तो मम्मा को मुरली का बहुत प्यार था और मुरली उन दिनों में आती थी लिथो करके। तो बाबा मुरली चलाने के बाद 10 दिन के बाद लिथो मुरली आते थे, परंतु बाबा क्या करते थे, जो मुरली सुनाते थे इशु दादी शॉर्ट हैंड में लिखकर उसी समय, फिर उसको ठीक करके लिखती थी और उसी दिन शाम को फास्ट पोस्ट से बम्बई आते थे। तो पांडव भवन से मुरली ट्रेन के टाइम पर नीचे पहुंचानी पड़ती थी स्टेशन पर, और वो ट्रेन दूसरे दिन सवेरे पहुंच जाती बम्बई और दिन में घर में पहुंच जाती थी। तो मम्मा वो सुनती थी, फिर वो ग्राइंडिंग का फोर्सफुल टेप रिकॉर्डर निकला तो बाबा ने मशीन भी भेजा और बाबा की टेप भर जाती थी तो भेज देते थे, वो भी सुनती थी। और जब बाबा की मुरली पोस्ट में आती थी, यदि पोस्ट में और भी कुछ लेटर याद प्यार का होता था वो पहले नहीं मरती थी मम्मा, पहले मुरली पढ़ना, मंथन करना और क्लास कराना। तो मम्मा के क्लास में धारणा की पॉइंट बहुत अच्छी थी और सबको मम्मा के क्लासेस बहुत अच्छे लगते थे। तो मम्मा ने एक बात बताई, कभी किसी की बुराई देखो नहीं, सुनो नहीं, उसके लिए मम्मा ने कहा देखो हर एक अपने घर का कचरा बाहर निकालते हैं। उन दिनों में तो क्या करते थे, जैसे डस्टबिन में डालने की कोई आदत नहीं थी 60s में, तो क्या करते थे घर से अपने आंगन से कचरा निकाल के दरवाजे के बाहर फेंक देते थे। तो मम्मा ने कहा देखो पड़ोसी का कचरा कोई घर में लाएगा क्या? तो जिसने अपनी आदत निकालनी है, बुरी आदत या बुराइयां या अवगुण, उसको आप देखेंगे तो क्या होगा, आपके अंदर आ जाएंगे। इसने न देखना है न सुनना है। दूसरा कहती थी कि अपने मन में कोई भी कंप्लेन है ना, जहां तहां नहीं करो, सीनियर को करो, मम्मा बाबा को करो। तो उसके लिए एग्जाम्पल देती थी, यदि किसी को उल्टी आती है क्या करेंगे, रास्ते के बीच में नहीं करेंगे, यदि चलते फिरते हैं तो कोने में जाकर करेंगे। और यदि रास्ते के बीच में करेंगे तो सब इधर से पास होते होते जरा नाक बंद करेंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा, उस पर मक्खी बैठेंगे और वो मक्खी किसी के खाने पर बैठेंगे और जो खाएंगा वो बीमार हो जाएगा। घर में है आप तो सीधा बाथरूम में दौड़ेंगे, वॉश मशीन में या फ्लश कर देंगे। तो इसी रीत से यदि आप ऐसी वैसी बातें जूनियर को करेंगे, समान को करेंगे, फ्रेंड्स को करेंगे, उसको भी बीमारी लग जाएंगी, वो भी वही ओपिनियन रखेंगे। इसलिए बीमारी में या तो डॉक्टर की दवाई ली जाती है, इसी रीत से आप सीनियर को कहो तो सीनियर उनको सुधारेंगे। और मम्मा का चेहरा कितनी भी बीमार थी बदलता नहीं, क्योंकि 64 में कैंसर हुआ और उस समय बेस्ट हॉस्पिटल मुंबई की टाटा हॉस्पिटल थी कैंसर की। तो उस समय भी मम्मा 65 जून तक रही और ट्रीटमेंट लेती रही, तो रेडियोथेरेपी लेती थी, परंतु कभी चेहरे पर कोई दर्द की साइन नहीं। तो सारी हॉस्पिटल नर्सेस वगैरह देखने आते थे कि ये ब्रह्मा कुमारी की हेड है, देखो कितना चेहरा चमकता है, खुश मिजाज है। फिर जून की शुरू में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि मम्मा अभी ज्यादा नहीं रहेंगी, टर्मिनल स्टेज पर है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उसको जहां शरीर छोड़ना है आप ले जा सकते हैं। तो भाव विश्व किशोर हमेशा मम्मा बाबा के साथ आता जाता था, स्पेशली जब ट्रीटमेंट करनी होती थी तो भाव कहे मम्मा जा नहीं सकती। बाबा ने कहा है मम्मा अंत तक हमारे साथ रहेंगे, पर आबू ले आए तो मुंबई से जब छुट्टी लेती थी तो मम्मा के फेफड़े के आसपास पानी भर गया था, कैंसर फैल गया था, तो मम्मा को सांस लेने में तकलीफ होती थी। परंतु जाते समय गोसुन कमसुन टोली तो देनी है, तो उन्होंने क्या सिस्टम बनाए, ब्राह्मण यहां से आते थे यहां से जाते थे, जब कोई सामने से आता था मम्मा ठीक सांस ले, जब जाता था मम्मा गहरा सांस ले, मतलब किसी को मालूम नहीं पड़ा कि मम्मा टर्मिनल स्टेज में है। हम दो चार डॉक्टर्स थे, दो डॉक्टर्स थे और दादियां थी, उनको मालूम था, बाकी बाबा ने दीदी मनोर दादी और कोई दादियों को बताया नहीं। फिर बंबई में भी थी, जब ठीक होती थी क्लास करा लेती थी, बीच बीच में पुणे भी जाती रही, और जानकी दादी भी पुणे से बीच बीच में आती रही, मतलब सेवा अंत तक की। लास्ट दिन 24 जून गुरुवार था, उन दिनों में भोग 12 बजे लगता था और भोग के बाद बाबा जल पिलाते थे और मम्मा भोग देती थी, और मम्मा अपने कमरे में ही उस दिन भी सबको भोग दिया। उसी दिन सवेरे सावित्री दादी और दादा राम, जो लखनऊ के थे और हांगकांग के निमित्त बने, वो यहां से सवेरे गए, ख्याल नहीं था कि मम्मा इतनी सीरियस है। लखनऊ पहुंचे मालूम पड़ा मम्मा गई, फिर दूसरी ट्रेन में वापस आ गए। और मुंबई से भी भाई बहने दौड़ते दौड़ते पहुंच गए, और मम्मा के एक दिन यहां रखा हिस्ट्री हॉल में, और जून मास था इसलिए इतनी गर्मी नहीं थी, और दूसरे दिन संस्कार किया। तो मम्मा कभी अमृत वेला मिस नहीं करती, चाहे 11-12 बजे सोती थी, उनका 2:30 बजे उठने का और योग में बैठने का टाइम फिक्स। एक दिन रात को 12 बज गया तो सवेरे वही टाइम पर उठ गई। रमेश भाई ने कहा मम्मा आप इतना देरी से सोई, अपने टाइम पर उठ गई। मम्मा ने कहा यदि मिनिस्टर को मिलने में जाग सकती हूँ तो सवेरे 2:30 बजे तो मेरी पीयू के साथ अपॉइंटमेंट है, वो कैसे मैं मिस करूंगी। दूसरा, मम्मा बाबा को सदैव हाँ जी हाँ जी, जब भी बाबा जो भी काम कहे हाँ जी। एक उन दिनों में शुरू शुरू में क्या करते थे, संदेशी ध्यान में जाती थी और देख के आती थी, और जो देख के आती थी फिर बाबा को कहती थी कल उसका ड्रामा करना है। एक रात को 9 बजे संदेशी ने संदेश दिया लक्ष्मी नारायण का, कल शादी का सीन दिखाना है। मम्मा को बुलाया बाबा ने 9 बजे के, सवेरे 9 बजे लक्ष्मी नारायण का ड्रेस चाहिए और अलंकार चाहिए। तो मम्मा ने 4-5 बहनों को सिलाई करने बिठाया, 4-5 बहनों को अलंकार बनाने बिठाया, खुद भी जागी सारी रात और सवेरे दे दिया। एक बारी जैसे हम लोग जब छुट्टी लेते थे बाबा से गोसुन कमसुन टोली लेकर जाते थे, तो एक दिन बाबा को अचानक गोसुन कमसुन टोली देते देते ख्याल आया इनको गरम गरम हलवा खिलाएं, अभी जा रहे हैं। वो मनोहर दादी सामने खड़ी थी, कहती थी ये क्या, अभी बाबा कहते हैं कैसे देंगे, पर मम्मा ने को बुलाकर कहा हलवा बनाओ गरम गरम। मम्मा जाके 10 मिनट में बना के आई। भाई लोग उस समय साइकिल पर आते जाते थे पोस्ट ऑफिस वगैरह में, और पैसेंजर्स क्या करते थे, यहां से बस स्टॉप तक चल कर जाते थे और सामान घंटे पहले बैलगाड़ी में जाता था। तो सामान पहुंचे, पैसेंजर पहुंचे, बस पर सामान चढ़ाए, उसके पहले हलवा मिल गया। तो ये है हमारी मीठी मम्मा। छोटी आयु में आई थी, बाबा ने विशेषता देकर माँ का टाइटल दे दिया और माँ का पार्ट बहुत अच्छा बजाया, सभी को फीलिंग आती थी, गोद में जाते थे, बड़े बड़े भाई भी गोद में जाते थे, माँ की फीलिंग आती थी। ब्रह्मा बाबा से मैं 1.25 साल के बाद मिली मधुबन में। और उसके पहले तो कई स्टोरी सुनी थी, पत्र व्यवहार भी हम लिखते रहे, क्योंकि हम आए तो ज्ञान में, जैसे भी कोर्स पूरा हुआ हमने बाबा को पत्र लिखा कि मैं आपकी बच्ची बनी हूं। फिर दूसरा पत्र 1 मास के बाद लिखा, अपनी कर्म कहानी और फोटो। तो बाबा ने तो फोटो देखकर ही आत्मा को पहचान लिया। परखने की शक्ति बाबा की तेज थी, कोई भी सामने आए नीचे से ऊपर देखकर समझ जाते थे। क्या है, कैसे हैं, फैशनेबल है, बॉडी कॉन्शियस है, सोल कॉन्शियस है, क्या है। तो बाबा हमें निर्मलाश्रम या मम्मा का फूल कहते थे, जो कि मैंने मम्मा से ज्ञान लिया था। और फिर मम्मा बाबा से मैंने पूछा, बाबा मैं मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ इस सेवा में लग जाऊं। बाबा कहने, तुमको डबल डॉक्टर बनना है, रूहानी जिस्मानी दोनों प्रैक्टिस करनी। दूसरा प्रश्न पूछा कि मेरी इच्छा है, मुंबई में तो बहुत डॉक्टर है, मैं कहां गांव में जाके सेवा करूं, और मेरे लौकिक पिता की इच्छा है मैं बंबई में ही सेवा करूं, और बंबई में हम लोग लौकिक हमारे कांदीवली रहते थे, जो कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट से करीब 20 मील दूर, और उस समय इतना डेवलप भी नहीं हुआ था। कांदीवली भी तो गांवड़ा है ना, वहीं करूं। तो फिर मैंने शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ कि बंबई में उस समय सिर्फ दो सेंटर थे, एक वाटरलू एक सायन, और दोनों फ्लैट में। तो रमेश भाई ने सोचा फ्लैट में आश्रम हो वो ठीक नहीं, हमको बंगलो टाइप चाहिए, हो सकता है कि कांदीवली बोरीवली मलाड के तरफ सस्ते मकान मिल जाए। मुझे कहा आप जरा ढूंढो मकान की प्राइस क्या है। तो ढूंढने के पहले मैंने सोचा मुझे शादी तो करनी नहीं। मेरे लौकिक पिता ने हम सभी लड़कियों के लिए डावरी के लिए बाजू पैसा रखा था, और मेरी एक दो बहनों को फ्लैट भी दिए थे शादी में। तो मैंने लौकिक पिता से पूछने के पहले बाबा से पूछा, बाबा हमारे मकान के पीछे हमारे पिताजी का जमीन का प्लॉट है, मैं उनसे मांगू। बाबा ने कहा तुम्हारा लौकिक पिता फ्लैट अरे जमीन देगा, तो मैं अलौकिक पिता मकान बनाएंगे। मैंने लौकिक पिता से पूछा, वो कहे लड़कियों को इतना नजदीक नहीं रहना चाहिए, तुम दूसरा फ्लैट ढूंढो। फिर मैंने फ्लैट ढूंढना शुरू किया। तो मैंने सोचा कि अभी कांदीवली में प्रैक्टिस करनी है तो कांदीवली में ही फ्लैट लेवे। उसने कहा एक फ्लैट लेना 20,000 दूंगा 64 में। मैंने एक वहां तो उस समय फ्लैट इतना छोटा छोटा, तो हमने क्या किया दो फ्लैट लिया, एक दो बेडरूम का एक तीन रूम, एक एक बेडरूम एक दो बेडरूम। और एक फ्लैट को बन रहा था मकान, उसको हॉल बना दिया। मतलब बेडरूम सिटिंग रूम किचन सब मिला के एक बना दिया और दूसरे फ्लैट में जैसे रहने का एक सिटिंग रूम बेडरूम और किचन बाथरूम तो 20 के बजाय 40 का खर्च कर दिया और पिताजी ने दे दिया सब। फिर उस समय जब हमारे पिताजी ने हाँ कहा, क्योंकि माँ बाप दोनों मम्मा बाबा से मिले थे, मिलाया था, क्योंकि मुंबई में तो मम्मा बाबा आते रहते थे, पर ज्ञान क्या भगवान भी आकर मुझे समझाएगा मैं नहीं मानूं। जगदीश भाई ने प्रदर्शनी दिखाई, पक्के वैष्णव, रोज लक्ष्मी नारायण की चित्र की पूजा करना, मेरी माँ बाल कृष्ण की पूजा करना और गायत्री मंत्र पढ़ना आदि, भक्ति करते थे दोनों, परंतु ज्ञान में नहीं। तब बाबा ने कहा ये श्याणी बच्ची है, माँ बाप को समझाकर अपना वर्षा लिया पूरा। फिर ब्रह्मा बाबा बहुत प्रेम स्वरूप थे, जो बाबा को कहते हैं ना प्यार का सागर, तो जो भी बाबा की गोद में जाता था समझता था बाबा मेरे से बहुत प्यार करता है, चाहे ऊपर ऊपर का करता था बाबा कहते हैं, परंतु उनको फील होता था बाबा मुझे बहुत प्यार करता। और जो भी बाबा मिलते थे तो बाबा 5 मिनट में उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर समझ जाता था, क्योंकि कई बार जो टीचर बहने लाने वाली होती थी ना स्टूडेंट, वो बहुत स्टूडेंट का प्रेस करती, ये ऐसा 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 है, उसके जाने के बाद दादी जो बाजू में बैठी होती थी ना उसको सुना देता था चलने वाला नहीं है। और कई भी, क्योंकि बाबा के यज्ञ में कई हत्यारे भी आए हैं, चोर लुटारू सब आए हैं, पंचम सिंह डाकू का तो आप सभी ने सुना होगा कि कैसे ज्ञान में आने के परिवर्तन हो गया। परंतु जो भी बाबा के पास आते थे, चाहे वो बाबा को मालूम भी था कि इसने हत्या की है, इतना ही प्यार करते थे। टीचर भी बहुत स्ट्रिक्ट थे, क्लास में आप देखो बाबा के 5 मिनट के आने के पहले आंगन में सब दौड़ते दौड़ते बाबा के पहले पहुंच जाना है, क्योंकि बाबा कहते थे टीचर के पहले स्टूडेंट्स को क्लास में आना है। और किसी को भी टेका लेकर नहीं बैठना, सोफा तो थे नहीं उन दिनों में हिस्ट्री हॉल में, पर दीवार को भी टेका नहीं लेना। उन समय में तो सब जवान थे ब्राह्मण, सरेंडर ब्राह्मण, और सामने बैठकर किसी ने झुटका खाया या उबासी खाई, कहते थे मुरली में इंटरेस्ट नहीं है ना, इसलिए अलर्ट होके बैठना। और मुरली में भी कहते थे ना, डांसिंग गर्ल स्टेज पर होती है, कोई हियर हियर करता है उसको मजा आती है। तो बाबा कहते थे मुरली के टाइम हाँ 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 टाइम मजा आता। और क्लास में फटाफट शिक्षा भी दे देते थे, कभी दो बहनों का आपस में नाम रूप का प्यार होता था, फैमिलियारिटी होती थी, उसी समय मुरली में सुनाया बहनों का आपस में प्यार होता है, नाम रूप का प्यार होता है। तो सुनने वाले तो समझ के जाते थे कि आज बाबा ने किस पर मुरली सुनाई है। और बाबा हर एक की रग पहचान लेते थे और उसी अनुसार राय भी देते थे। और जिसका जिस प्रकार से चलना चाहिए, क्योंकि एक बार दादी जानकी को यहाँ पैलेस में एक महारानी आई थी, उसके पास भेजा और फिर दादी ने बताया वो महारानी तो सवेरे 4 बजे में उठकर योग करती है, प्रार्थना अपनी भक्ति करती है। तो दूसरे दिन बाबा ने पूछा अमृत वेले उसको योग का दान दिया। एक बारी उषा बहन यहाँ माउंट आबू में किसी मिनिस्टर से मिलने गई, फिर आकर सुनाया उस मिनिस्टर ने फल ऑफर किया, मैंने नहीं लिया। बाबा कहते ये तो डिससर्विस हुई, कुछ तो लेना चाहिए। और बंबई में होते थे तो रहते थे कहाँ, क्लास कहाँ होता था, तो मुरली के पहले रमेश भाई कभी कभी हैंगिंग पार्क में ले जाते थे, लॉन्ग बोट जहाँ है। फिर बाबा हमेशा कहते थे कि सर्विसेबल बच्चे हमेशा अपनी बैग में पर्चा रखते हैं, पर्चा नहीं रखते माना हजाम। तो रमेश भाई को कहते थे फलाने व्यापारी को जाकर संदेश दो, फिर आकर पूछते, जब वापस आता था क्या बात बताए, क्या प्रश्न पूछा उसने, तुमने क्या जवाब दिया। और हम बंबई से फल ले आते थे, दिल्ली बंबई से ही फल आते थे, यहां तो कुछ फल नहीं निकलते, तो देखते थे फल कैसा है, प्राइस कितने दी है। यदि ठीक प्राइस नहीं दी बुद्धू क्योंकि खरीदारी में तो बहुत वो करना पड़ता है ना, प्राइस नीचे लानी पड़ती है, फल भी अच्छा लाना पड़ता है आदि आदि। मतलब बाबा ने सर्विस करना भी सिखलाया सबको। अभी तक आप सुनते हैं ना, मुरली में डायरेक्शन देते रहते हैं, ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए, गीता का भगवान सिद्ध करो, पर्चे छपाओ, सब प्रश्न पूछो, आपका परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है, पतित पावन कौन, गंगा या ज्ञान। और गीता का भगवान कौन, तो ऐसे ऐसे डायरेक्शन देते रहते थे। और जो डायरेक्शन को अमल में लाते थे बाबा बहुत खुश होते थे। और बेगरी पार्ट में दादी जानकी कहाँ कहाँ जाकर फैक्ट्रियों के मालिक, प्रिंटिंग प्रेस के मालिक के पास जाकर छपवा कर कुछ चीज लाती थी, बाबा बहुत खुश होते थे। तो उन दिनों में भाव विश्व किशोर, वो भी शॉपिंग करने में बहुत होशियार था, पहुंच जाता था फैक्ट्री के मालिक के पास, सेवा करते थे कि यज्ञ कैसे चलता है, कितना भाई बहनों की पालना होती है, कैसे हम विश्व का उद्धार करने ये सेवा कर रहे हैं। तो फैक्ट्री का मालिक कॉस्ट प्राइस में कभी फ्री में दे देते थे। तो बाबा ने सब कुछ सिखाया अपने एग्जाम्पल से। कोई बीमार होता था खुद जाकर दृष्टि देता था, जल पिलाता था, माथे पर हाथ देता था, दृष्टि देता था, और पेशेंट नहीं जान आ जाती थी। ओम शांति।
तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है, मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। जिसे पाकर न पाना कुछ शेष रह जाए, पाके इतना बाबा अपना दिल अब तो गाए, साथ अपने है जग का जो रखवाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तेरी आँखों से पीते हम हैं अमृत प्याले, बड़ी जतन से छुपा कर नजर में हो पाले, तुम्हारे याद के मोती गले की माला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला। बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्हीं, नैन के नूर लाड लो मेरी आवाज तुम्हीं, मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला।